सत श्री अकाल मित्रों, स्वागत है समाधान कार्यक्रम में आप सभी का। मित्रों, एक साधु 50 वर्ष से एक ही जगह पे बैठ के भगवान की प्रार्थना कर रहे थे। उनके बहुत सारे बंदे भी उनके आसपास बैठे हुए रहा करते थे, यदाकदा आ जाया करते थे और लगातार देख रहे थे कि ये जो साधु महात्मा जी हैं 50 साल से एक ही जगह पे बैठे हुए भगवान की स्तुति कर रहे हैं। एक दिन आकाशवाणी हुई कि तुम भले ही जितने भी प्रार्थना कर रहे हो 50 साल से, वो सभी निरर्थक है, ये भगवान ने स्वीकार नहीं की है। जब ये सुना उनके बंदों ने तो उन्हें बड़ा दुख हुआ कि 50 साल से महात्मा जितनी मेहनत कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं, इसे स्वीकार क्यों नहीं किया भगवान ने, बहुत निराश हुए। लेकिन इसके ठीक विपरीत वो जो संत थे वो खुशी में डांस करने लगे। भक्तों को बड़ा ही आश्चर्य हुआ कि महाराज, आपको तो दुख होना चाहिए कि 50 साल की तपस्या वो भी निरर्थक चली गई। संत ने कहा कि भले ही भगवान ने मेरी स्तुति को स्वीकार नहीं किया, लेकिन भगवान को ये पता तो है ना कि मैं 50 साल से तपस्या कर रहा हूँ, उनकी प्रार्थना कर रहा हूँ, उनकी स्तुति कर रहा हूँ। और जब उन्हें ये पता है कि 50 साल से मैं प्रार्थना कर रहा हूँ तो जरूर इसका फल वो मुझे देंगे ही देंगे। मित्रों, कई बार हम मेहनत करते रहते हैं और हमें फल नहीं मिलता तो हम बहुत ज्यादा निराश हो जाते हैं। लेकिन भगवान को तो ये पता है ना कि आप मेहनत कर रहे हैं, आप साधना कर रहे हैं और जितनी मेहनत आप करेंगे निश्चित रूप से उसका फल भी जरूर मिलेगा। वो कहते हैं ना कि भगवान के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं है, और कर्म का सिद्धांत भी यही कहता है कि आप जो करते हैं उसका फल जरूर मिलता है। इसलिए अच्छे से अच्छा कर्म करते चलिए, उसका फल निश्चित रूप से आपको मिलेगा ही मिलेगा। आइए सुंदर बात के साथ आज के समाधान की शुरुआत करते हैं। अभिनंदन करते हैं भ्राता जी का। भ्राता जी, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है।
शुक्रिया
भ्राता जी। इतना पॉजिटिव रहना कई बार सहज नहीं होता। 50 साल की साधना, उसके बाद ये कहा जाए कि ये निरर्थक चला गया, उसके बाद भी संत का खुश होना बहुत सुंदर बात दर्शाता है।
हाँ, मुझे लगता है संत जी इसलिए भी डांस करने लगे कि उन्हें यह आभास हो गया कि भले ही मेरी प्रार्थना स्वीकार हुई या न हुई, पर वो सुन तो रहा है और जरूर 50 वर्ष से उसकी दृष्टि भी मेरे पर है।
जी, जी।
तो ये कितनी बड़ी बात है। जो आत्माएं पुण्य कर्म करते हैं वो सचमुच भगवान के दिल में बसे रहते हैं। प्रार्थनाओं से भी कहीं श्रेष्ठ है पुण्य कर्म करना। पुण्य कर्म उस तक ज्यादा सुंदर ढंग से पहुंचते हैं, और उसमें भी यदि कोई महापुरुष निष्काम भाव से पुण्य कर्म करने लगे, यानी पुण्य कर्म करे और उसके रिटर्न में कुछ भी कामना न करे, केवल श्रेष्ठ कर्म करना हमारा कर्तव्य है, दूसरों को मदद करना हमारा कर्तव्य है, बड़े बड़े आयोजन करना, बड़े बड़े कार्य करना हमारा कर्तव्य है, उसके रिटर्न में मान की महिमा की कोई इच्छा नहीं, ऐसा अगर निष्काम भाव आ जाए तो बस ये तो प्रभु को अति प्रिय है।
जी जी पता जी, लेकिन ये जो एक सब्र वाली बात होती है ना, कई बार हम करते हैं इंस्टेंट फल की कामना करते हैं। यहाँ तो 50 साल की बात थी, हम तो 5 मिनट या 50 मिनट ही कुछ करते हैं, उसके बाद सोचते हैं कि हमें सुंदर फल मिल जाए। कितना लंबा वैसे इंतजार करना चाहिए, और वास्तव में ये जो सब्र है इस सब्र को कैसे कायम रखना चाहिए, क्योंकि यही टूट जाता है बार बार।
बिल्कुल, बहुत लोगों में यही है कि तुरंत फल।
जी,
इसको बाबा अपने महावाक्यों में कहते हैं कच्चा फल, अभी अभी किया, अभी अभी चाहिए। तो कभी कई बार मिल जाता है, कई बार नहीं मिलता, और अगर मिल भी जाता है तो भविष्य की प्रारब्ध उससे वहीं समाप्त हो जाती है। इसलिए एक समझदार मनुष्य को संतोष पूर्वक, धैर्य पूर्वक अपने कर्म करते चलने चाहिए, अपना पुरुषार्थ करते चलना चाहिए, भिन्न भिन्न फील्ड में, चाहे वो विद्यार्थी हैं, IAS का कंपटीशन दे रहे हैं, बहुत फोन आते हैं, सफलता नहीं मिल रही है और निराश होते हैं, कई बहुत होशियार भी होते हैं, और कई बार ऐसा होशियार बच्चे रह जाते हैं और कम होशियार बच्चे सेलेक्ट हो जाते हैं, तो उन्हें और उनके परिवार वालों को और निराशा होती है, क्योंकि इन सब चीजों में थोड़ा सी जनरल नॉलेज का ज्यादा महत्व है, पर्सनालिटी का ज्यादा महत्व है, मुकाबले इसके के एग्जाम में किसके कितने ज्यादा मार्क्स आए हैं, वो एक अलग फील्ड है, ये एक अलग फील्ड है। तो बिल्कुल भिन्न भिन्न फील्ड में, चाहे वो किसी का बिजनेस है, नौकरियों में प्रमोशन की बात है, घरों में भी अनेक बातें हैं, चाहे भक्ति पूजा पाठ है, चाहे हमारी राजयोग की साधना है, हमें एक लंबे काल तक इसको करना ही पड़ता है। देखिए, जो राजयोग के साधक हैं उन्हें तो ये अच्छी तरह जानना चाहिए कि लंबे काल की साधना ही सुंदर फल देती है, और यदि बीच में ही किसी फल की कामना है, कुछ चीज सिद्ध हो जाए, कुछ और मान महिमा हो जाए, कम से कम लोग मुझे अच्छा योगी तो कहने लगे, ये तो कहने लगे वाह इस जैसा तो तपस्वी कोई नहीं, ये सब कामनाएं भी मनुष्य के मनोबल को डाउन करती हैं।
जी एक बात ये भी तो आती है कि मान लीजिए हम लंबे समय से साधना कर रहे हैं, लंबे समय से कोई विशेष कार्य अर्थ मेहनत कर रहे हैं, लौकिक हिसाब से देखें या फिर अलौकिक साधना के पथ को लेकर देखें, यदि सफलता नहीं मिल रही होती है तो मन में कई बार एक प्रश्न या दुविधा उठती है कि हम सही तो कर रहे हैं ना, क्योंकि हम सही नहीं कर रहे होते हैं तो फिर फल नहीं मिलता है, और शायद हमारा ट्रैक या हमारी विधि कहीं इसमें तो कुछ गलती नहीं है, तो ये संशय आना शुरू हो जाता है। तो क्या इस दृष्टि से भी हमें विचार नहीं करना चाहिए?
हाँ नहीं, दोनों विचार करने चाहिए, हमारा ट्रैक भी बिल्कुल ठीक हो, हमारी मेहनत भी अच्छी हो, हमारे पास विजन भी बहुत सुंदर हो और हम पॉजिटिव भी बहुत हों, क्योंकि आज तक इन फील्ड्स में ये देखा गया है कि जो लोग निगेटिव हैं उन्हें सफलता बहुत देर से मिलती है, और जिन्होंने अपने चित्त को शांत कर लिया है, जो बहुत आशावादी हैं, और जो मान लो आज एक साल में हमें किसी कंपटीशन में सफलता नहीं मिली, मनुष्य को इस तरह सोचना चाहिए कि शायद ये प्रॉपर टाइम नहीं था शायद, और जो ईश्वरीय ज्ञान से संपन्न है उन्हें जानना चाहिए कि इस विश्व ड्रामा में हर बात बहुत कल्याणकारी है, इसलिए चलो इसमें भी कुछ कल्याण रहा होगा, हमें और कुछ अनुभव प्राप्त हो जाएंगे, और शायद बाबा को ये हमारी चीज पसंद न हो, वो हमसे कुछ और कराना चाहता हो, प्रभु की पसंदी कुछ और हो। लेकिन मैं एक बात इसमें जरूर कहना चाहता हूँ, जो बहुत अनुभवों से बिल्कुल सत्य है, ऐसा आभास हो चुका है कि जिस मनुष्य के पुण्य कर्म बहुत हैं, उसके पास्ट के पुण्य कर्म उसके वर्तमान को बहुत ज्यादा सफल करते हैं। देखिए हमारे वर्तमान को पास्ट भी पूरी तरह से इफेक्ट करता है और फ्यूचर भी इफेक्ट करता है, ये बहुत सटल फिलोसफी है। मान लो फ्यूचर में हमें उस फील्ड में जाना ही नहीं है, मान लो एक लड़का पीसीएस का एग्जाम दे रहा है, उसको एसडीएम बनना है, अपने स्टेट की एडमिनिस्ट्रेटिव सेवा में जाना है, लेकिन उसने 3 बार दिया और वो सफल नहीं हुआ तो निराशा तो उसके मन में आएगी, परंतु अगर उसके पास ईश्वरीय ज्ञान है और समझ है तो उसे समझना चाहिए कि शायद ये फील्ड उसके लिए प्रॉपर फील्ड नहीं है, यह स्वयं भगवान की इच्छा नहीं है कि वो इस फील्ड में जाए, इसलिए वो एक दूसरा फील्ड चुने जो उसके लिए बहुत अच्छा हो। ये कई बार देखा गया, और जैसा मैं कह रहा था जिसके पुण्य कर्म बहुत हैं पहले से ही, उसकी लाइन हर फील्ड में बहुत क्लियर रहती है, बिल्कुल ये सत्य है, कोई इसे स्वीकार करे या न करे, और मैं समझता हूँ बुद्धिमान लोग स्वीकार अवश्य करेंगे। एक बच्चा बहुत मेहनत करने के बाद भी सफल नहीं हो रहा, बहुत होशियार है, दूसरा लड़का बहुत कम मेहनत करता है, वह जल्दी सफल होता है, लोग इसे भाग्य कह देते हैं, भाग्य और कुछ नहीं हमारे कर्मों का इफेक्ट। तो मनुष्य को इसलिए हमेशा पुण्य कर्मों में तत्पर रहना चाहिए ताकि उसके जीवन में कभी भी निराशा ना हो।
पुण्य कर्म करना बहुत श्रेष्ठ है जिसकी चर्चा आप हमेशा करते हैं, लेकिन जब बच्चे बड़े होते हैं और एक फील्ड का चुनाव करना होता है तो बहुत सारे स्थानों पर मैंने देखा है कि उनका जो चयन है, क्या चुने क्या ना चुने, यह बड़ी दुविधा की स्थिति उनके लिए रहती है, और एक फील्ड कई बार चुन भी लेते हैं, थोड़ा आगे बढ़ने के बाद लगता है कि शायद ये ठीक ठाक हमने नहीं चुना है, तो कैसे सही सही फील्ड का चुनाव करें ताकि पीछे मुड़ने की भी बात ना आए, भारीपन भी महसूस ना हो।
कॉलेजों में देखा जाता है एक लहर होती है कि भाई हमारे साथी सब मेडिकल में जा रहे हैं, हम भी जाएंगे, अभी 10वीं कर लिया अब उसके बाद हम बायो लेंगे, ये लेंगे वो लेंगे, हमें तो मेडिकल में जाना है। दूसरों ने बचपन से सुना हुआ इंजीनियरिंग का फील्ड बहुत अच्छा है, अरे हम तो मैथमेटिक्स लेंगे, ये लेंगे वो लेंगे, हमें तो इंजीनियर बनना है। तो एक कंपटीशन सा भी रहता है, एक वातावरण भी उस तरह का बना रहता है, कई बार जो कमजोर स्टूडेंट हैं वो भी इंजीनियरिंग का एंट्रेंस एग्जाम देने लगते हैं, मेडिकल का एंट्रेंस एग्जाम देने लगते हैं, और कई बार वो सफल भी हो जाते हैं, फिर उनके ब्रेन पर बहुत दबाव पड़ा रहता है क्योंकि वो उतने इंटेलिजेंट नहीं होते हैं। एक तो ये देखना चाहिए कि बचपन से मनुष्य के मन में क्या रुचि है, क्या उसकी फीलिंग्स हैं कि मुझे बड़ा होकर ये बनना है, ये देखना होगा उसके माँ बाप को या और जो भी उसके बड़े बुजुर्ग फ्रेंड्स या रिलेटिव्स हैं। बच्चे आजकल खुद निर्णय जब करते हैं तो कभी कभी कठिनाई होती है, लेकिन कभी खुद निर्णय भी उनका ठीक होता है। तो पूर्व के उनके संस्कार क्या हैं, उस आधार पे उन्हें निर्णय करना चाहिए और माँ बाप को इसमें बहुत अच्छा साथ देना चाहिए।
बिल्कुल बिल्कुल, चलिए हम कोशिश तो यही करते हैं कि अच्छे से अच्छा फील्ड का चयन हो, और हमारी दुआएं रहेंगी कि हर एक जो फील्ड चुन लेता है उस पद पे सफल हो। दादाजी मान लीजिए अब बोझ महसूस होने लगा है उस फील्ड में उनको, तो जैसे आपने कहा फील्ड चेंज कर देना चाहिए, लेकिन कई बार माता पिता इसके लिए तैयार नहीं होते हैं कि बच्चा 3-4 साल पढ़ चुका है और फिर से फील्ड चेंज करे, पता नहीं वहां भी सफल हो ना हो, ऐसी कंडीशन में विशेष क्या सजेस्ट करें?
हाँ, कई केस ऐसे हो चुके हैं कि कई बच्चों ने 3-3 बार अपने फील्ड चेंज कर लिए लेकिन वो तीनों बार सफल नहीं हुए और अब उनके जीवन में बहुत बड़ी निराशा हो गई कि 10 साल चले गए हमारे, हम कहीं भी नहीं पहुंच पाए। इसलिए अगर 2 साल कोई कोर्स कर लिया है, बीटेक का 4 साल या मेडिकल का 4-5 साल, 2-2.5 साल कर लिया, तो उसके बाद उन्हें चेंज करने का सोचना नहीं चाहिए, उसी में कंसंट्रेट करना चाहिए, उसी को अपनी रुचि बना लेनी चाहिए, अपनी इनर पावर्स, बौद्धिक पावर कैसे डेवलप हो, जैसे हम कई चीजें बताते हैं, वो इन चैनल आदि से भी सीख लेना चाहिए और वन साइडेड ही होने में कल्याण रहता है। नहीं तो इसमें निराशा बहुत होती है, क्योंकि प्रायः ये देखा गया, मान लो मेडिकल कर रहा है और वो अब किसी और फील्ड में जाना चाहे तो उस तरह की उसकी प्री एजुकेशन भी तो नहीं है ना, फिर वो वहाँ कमजोर पड़ जाता है, तो फिर वहाँ उसे निराशा होती है। इसलिए 2-4 साल पहले भी तो तैयारी की है, एंट्रेंस एग्जाम भी दिया है, 1 साल उसमें भी लगा के इन्हें 2 साल लगाए हैं, इसलिए जो फील्ड चुन लिया अब उसमें आगे बढ़ना चाहिए एकाग्रता के साथ।
दादा जी चलिए मैं आपको मेल की ओर लिए चलता हूँ। अब ये पहला मेल हमारे पास आया है रायगढ़ से, चंद्रमोहन सिंह जी लिखते हैं, कहते हैं कि मैं 40 वर्ष का अधर कुमार हूँ, 5 वर्ष हो गए हैं मुझे ज्ञान योग का अभ्यास करते हुए ब्रह्म कुमारी से जुड़े हुए, परंतु मुझे क्रोध बहुत आता है, मैं क्रोध को छोड़ना चाहता हूँ परंतु छूटता नहीं, इसलिए मैं अपनी इस कमजोरी से निराश होता जा रहा हूँ, खुश नहीं रह पाता, कोई उपाय बताएं। दादा जी कल भी आपको याद होगा हम लोग चर्चा कर रहे थे कि संस्कार का परिवर्तन या आदत का परिवर्तन सहज काम नहीं है, वो जल्दी नहीं छूटता है, इन्हें भी 5 वर्ष हो गए हैं विद्यालय से जुड़े हुए लेकिन क्रोध जो है जा नहीं रहे हैं।
पर मुझे लगता है क्रोध ही इन्हें इधर लाया है, क्योंकि क्रोध मनुष्य को बहुत अशांत करता है और ये इनकी बहुत बड़ी खूबी हो गई कि इन्हें ये आभास है कि क्रोध बहुत बुरा है और मुझे इसे छोड़ना चाहिए, ये अपने में एक बहुत बड़ी क्वालिटी है। तो इन्हें ये याद रखना होगा कि मेरे पास एक दूसरी क्वालिटी भी है बहुत बड़ी और मैं बहुत अच्छी अच्छी चीजों में विन कर सकता हूँ, तो क्रोध में भी मैं विन करूंगा, इसको छोड़ने में मुझे विजय प्राप्त होगी। तो पहले तो अपने मन में ये संकल्प कर ले कि मुझे क्रोध को छोड़ने में अब विजय पानी है और वो मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। एक आत्मविश्वास, मेरे पास भी ऐसे ही कई लोग आ जाते हैं, बिल्कुल ऐसे ही केस, मैं उन्हें देखता हूँ कि सचमुच वो बेचारे उदास जैसे दिखाई देते हैं, एक चीज वो छोड़ना चाहते हैं, और छोड़ना भी क्यों चाहते हैं, क्योंकि कई फील्ड में उसके कारण उन्हें असफलता होती है, उन्हें सहयोग नहीं मिलता। अब दुकान भी है, मान लो बड़ी दुकान है, इन्हें बहुत क्रोध आता है, 5 लोग इनके साथ वर्कर हैं, अब ये बहुत क्रोध कर देते हैं तो धीरे धीरे 5ों निकल जाते हैं, फिर दूसरे 5 आते हैं, फिर ये बहुत क्रोध कर लेते हैं, फिर वो भी निकल जाते हैं,
गुस्से में ना जाने
हाँ, क्या क्या बोल देते हैं, उनकी भावनाओं को हट कर, कभी उन्हें कह देंगे तुम नौकर हो, तुम मजदूर हो मेरे, तुम्हें मेरी बात माननी है, तो चाहे मजदूरी हो अपनी इंसल्ट तो कोई भी मनुष्य सुनना नहीं चाहता है, तो फिर क्या वातावरण बनता है, कोई उसके बाहर नहीं आएगा, वातावरण बन जाएगा बड़ा व्यक्ति क्रोधी है, इंसल्ट करता है, उसके पास नहीं जाओ, भूखा रहना अच्छा भाई, उसके पास नहीं जाना है। तो देखता हूँ मैं कि लोग बड़े उदास रहते हैं कि एक कमजोरी ने हमारे सारे कारोबार को जैसे नष्ट कर दिया होता है, उधर घर में बच्चों पर बुरा इफेक्ट, छोटी छोटी बात में वो क्रोध करेंगे, डांट डपट करेंगे, तो बच्चे भी खुश नहीं रहते, कोई उनके नजदीक नहीं आएगा, और फिर बूढ़े होकर क्या होता है कि जब वो बीमार होते हैं कोई उनकी सेवा करने वाला नहीं होता, क्योंकि वहां भी वो बहुत इरिटेट रहने लगते हैं। इसलिए मैं अप्रिशिएट करूंगा इन्हें, 40 वर्ष के हैं ये, मैं युवा ही कहूंगा, जिनमें अभी भी जज्बा है कि मुझे अपने इन मनोविकारों को छोड़ना है। तो पहले मैं थोड़ा सा विस्तार से कहूंगा, पहले तो ये अपने ईगो पे ध्यान दें, ईगो क्रोध का जन्म दाता है। कहां मेरे अंदर अहम काम कर रहा है, और फिर स्वमान के अभ्यास से पहली पकड़ अहम पर करें, पहली विजय अहंकार पर मुझे करनी है, ये लक्ष्य रख लें और सोचे कि मुझे बहुत नम्रचित्त होना है। सब तो मेरे अपने हैं, जिन पे मैं क्रोध करूंगा उनका भी अपना एक जीवन है, उनका भी परिवार है, उनके भी बच्चे हैं। अब वो बेचारे मेरे पास काम करने आए हैं, मान लो मेरे क्रोध के कारण वो नौकरी छोड़ के जाते हैं तो कठिनाई उन्हें भी बहुत होगी। तो एक प्रेम भाव पैदा करें, नम्र भाव पैदा करें, पहले तो ये जरूरी है स्वमान के अभ्यास के द्वारा। और रोज सवेरे अमृत वेले उठकर बहुत अच्छे अच्छे योग के अनुभव करें। दूसरी बात इन्हें देखनी है कि मुझे क्रोध किन परिस्थितियों में आता है। मान लो नौकर ठीक काम नहीं कर रहे हैं, उन पे क्रोध आता है। बच्चे होमवर्क नहीं कर रहे, पढ़ाई ठीक नहीं कर रहे, उस पे क्रोध आता है। या पत्नी ने आज भोजन अच्छा नहीं बनाया, थाली फेंक दी, उस पर बहुत क्रोध आता है। तो किस परिस्थिति में क्रोध आता है, अब इसमें भिन्न भिन्न रूप से इन्हें पहले अपने विचारों को चेंज करना है। अब इसके साथ काम करने वाले लोग हैं, मान लो नौकरी है, मान लो एक व्यक्ति झाड़ू लगा रहा है इनकी दुकान में या कहीं भी स्टोर में, तो इनको सोचना चाहिए कि अगर वो बुद्धिमान होता तो झाड़ू लगाने थोड़ा ही आता, इसलिए मुझे इन्हें सिखाना है। कहीं भी उसने गलती की, कूड़ा इधर उधर फेंक दिया, कुछ सफाई की कुछ नहीं की, उसको ले जाओ प्यार से और कहो यहाँ देखो अच्छी करनी चाहिए, ऐसे किया करते हैं, सफाई ऐसे होनी चाहिए, तो उस व्यक्ति के मन में इनके लिए प्यार बहुत रहेगा और इनका क्रोध काबू में रहेगा। एक बात और भी, कोई व्यक्ति कुछ गलती करता है तो ये लक्ष्य बना लें मुझे सिखाना है। माताओं का बहुत होता है, घर में नौकरानी है, झाड़ू पोछा करती है, चूल्हा चौका करती है, बर्तन सफाई करती है, मान लो ठीक से नहीं करती तो उसको इतना गुस्सा करते हैं कि वो भी परेशान और खुद भी सारा दिन परेशान है। समझो उसी के साथ लड़ने में उनका सारा दिन बीत जाता है। एक केस आया था मेरे पास ऐसा, दो नौकरानी रखी हुई लेकिन उनसे ज्यादा काम इनको करना पड़ता है,
उनको समझाना,
उनपे गुस्सा करना, उनको डांट डपटना, बुरा भला कहना, ये खिन्न रहती है, पूरी इरिटेट रहती है सारा दिन। तो मैंने उनको यही बात बताई थी कि अगर वो भला बुद्धिमान होते तो तुम्हारे घर में बर्तन मांजने आती क्या, इनको जरा क्लिक हुआ, रे बात तो कुछ अच्छी है। तो मैंने कहा उनको सिखाओ, उनकी बुद्धि का विकास कराओ, उन्हें प्यार दो, अच्छी कुछ खिलाओ पिलाओ, वो तुम्हारे कंट्रोल में रहेंगी और वो कहेंगी मैं तो तुम्हारे घर को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। मालिक बना दो उन्हें कि मालिक बनकर सफाई धुलाई करो सब।
मतलब रहता जी एक पारिवारिक फीलिंग की शायद आवश्यकता है, वो हमारे नौकर हैं इस फीलिंग से करते हैं तो शायद वो गुस्सा आता है, परिवार के हमारे सदस्य हैं इन्हें सिखाना, ये भावना शायद चेंज ले आए।
दूसरी बात इन्हें मैं कहूंगा, ये लोग मेरी बात क्यों नहीं सुनते। ये जो एक बात है ना, चाहे बच्चे हैं पत्नी है, कई बार ऐसा होता है कि जो व्यक्ति क्रोधी होता है ना, लोग उसको इग्नोर करने लगते हैं, ये तो बोलता ही रहता है, बोलने दो इसे, बड़बड़ा रहा है, बड़बड़ाने दो,
इससे उनका गुस्सा और बढ़ने लगता है कि मेरी बात।
और बच्चे अगर और बड़े हो गए तो बिल्कुल केयरलेस हो जाते हैं, पापा तो ऐसे ही करते रहते हैं। अच्छा और भी नुकसान होता है, कई बच्चे जो बहुत सेंसिटिव होते हैं, जो माँ बाप का प्यार चाहते हैं, उन्हें बचपन से जब डांट फटकार मिलती है तो उनमें एक विशेष तरह का डिप्रेशन आता है और फिर वो प्यार की तलाश में इधर उधर भटक जाते हैं, कहीं भी राह भटकते हैं। अगर उनको माँ बाप का ही प्यार बहुत अच्छा मिल जाए, अच्छी सीख मिले, तो वो इधर उधर प्यार की तलाश में भटकेंगे भी नहीं। तो मेरी बात ये क्यों नहीं सुनते, इस संकल्प को हटाना पड़ेगा। इन्होंने ज्ञान योग सीखा है 5 साल से, अब इन्हें इस तरह सोचना है, क्या मैं भगवान की सारी बात सुनता हूँ। अगर वो ऊपर बैठ के सोचता हो ये 40 साल का इतना समझदार, ये मेरी बात ही नहीं सुनता, तो वो भी गुस्सा करेगा, फिर आपका क्या हाल होगा। तो मेरी बात क्यों नहीं सुनते, मैं तो सीधा सा सिद्धांत बताया करता हूँ कि यदि तुम भगवान की बात सुनोगे तो लोग भी तुम्हारी बात सुनेंगे, तुम भी तो सुनो। तो इसके पीछे मनुष्य का एक अहम काम करता है, ये मेरी बात क्यों नहीं सुनते, मेरे बच्चे हैं ना, ये मेरे नौकर हैं ना, ये मेरे लोग हैं ना, तो ये मेरेपन पे कटु नजर रख देंगे। जितना क्रोध ये दूसरों पे करते हैं उतना क्रोध अब मेरेपन पे करने लगे, मुझे इसे भगाना है। क्यों आया मेरेपन मेरे अंदर में? तो बुद्धि बहुत डिवाइन होगी। और नेक्स्ट बात मैं कहूंगा, मनुष्य को एक्सपेक्टेशंस बहुत कम रखनी चाहिए। ठीक है, हम अच्छी एक्सपेक्टेशंस तो रखेंगे, भाई एक व्यक्ति हमारे साथ काम कर रहा है वो अपना काम परफेक्टली करे, ऐसा काम करे जिम्मेदारी से कि किसी को देखना भी ना पड़े, लेकिन दूसरे व्यक्ति की कैपेबिलिटी कितनी है। फिर मैं वही बात कहूंगा कि योग्य बनाना दूसरों को, ये किसी मनुष्य की बहुत बड़ी क्वालिटी है। डांट डपट तो कोई भी कर सकता है, दूसरों को योग्य बनाने वाले इस संसार में बहुत कम है। अभी ने ये एक फॉर्मूला तैयार कर लेना है, मुझे ये नहीं सोचना ये मेरी बात क्यों नहीं सुनते, नहीं सुन रहे तो तुरंत ऊपर देखना है कि बाबा भी सोचता होगा ये मेरी बात क्यों नहीं सुनता। दूसरा, एक्सपेक्टेशंस को कम करना है। तीसरा, सबको बहुत अच्छी बातें सिखानी है, आप टीचर बन जाओ उनके, सिखाना है। अधिकार की फीलिंग थोड़ी सी हल्की कर दो और अपने अहम को स्वमान के द्वारा नष्ट करेंगे तो जितनी अपने में नम्रता होगी इनकी विजय हो जाएगी। और एक सुंदर अभ्यास भी मैं सिखाना चाहता हूँ जो मैं हमेशा सिखा रहा हूँ, फिर से सभी हमारे दर्शक और सुनने वाले हमें सुन ले इस बात को, क्योंकि क्रोध एक ऐसा जहर है जो जीवन में भी जहर घोल देता है, परिवारों को भी जहरीला बना देता है और इससे तबीयत बहुत बिगड़ती है, मनुष्य की हेल्थ पे बहुत बुरा असर आता है। लोग तो हंसी में कहा करते हैं क्रोध से तो इसका खून पानी बन जाता है, तो चेहरा तो लाल हो जाता है।
और डॉक्टर ये भी कहते हैं बेटा जी कि जो ग्रोथ करता है, तो जिस पे क्रोध कर रहा है उसको शुगर बीपी कुछ नहीं होता, लेकिन जो गुस्सा करता है उसे जरूर बीपी और शुगर होता ही है। तो ये तो नुकसान हमें गुस्सा कर रहे हैं तो
हार्ट की बीमारियां आती है, हाई ब्लड प्रेशर होता है, वो गुस्सा करने वालों को ही बीपी हाई हमेशा ज्यादा मिलेगा। एक शांत चित्त व्यक्ति को शायद ही बहुत कम केस हो जिसको हाई बीपी होता, क्योंकि वो साइलेंटली हर चीज को पास कर लेता है। सवेरे उठते ही ये 5-7 बार एक अभ्यास करेंगे, मैं क्रोध मुक्त हूँ, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, और फील करेंगे मुझे आत्मा से शांति की किरणें चारों ओर फैल रही हैं, मेरे ब्रेन को जा रही है। पहले ऐसा विजुअलाइज करें, 7 बार संकल्प कर लें, मैं पीसफुल आत्मा हूँ, मैं पीसफुल हूँ, और विजुअलाइज करें शांति की किरणें ब्रेन को जा रही हैं। फिर मैं क्रोध मुक्त हूँ, पीसफुल हूँ। बस इससे बहुत बड़ा फायदा होगा, हमारा ब्रेन भी साइलेंट होगा, मन भी शांत होगा, और निश्चित रूप से हमारी सुभावनाएं हैं। जब इनको श्रेष्ठ इच्छा है तो ये अपने इस अभियान, मैं इसको अभियान कहूंगा, ये 1-2 साल का इसका अभियान बना लें इसको, क्योंकि तो बहुत जल्दी ये चीज नहीं जाती है, ये अपने अभियान में अवश्य सफल होंगे।
आज के सुंदर प्रकाश के लिए व्रता जी बहुत बहुत शुक्रिया। विषय तो बहुत लंबा है, इस पे हम और चर्चा करते रहेंगे। आज के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, यदि आपको कभी ब्रह्मा कुमारीज के परिसर में आने का अवसर मिले, चाहे माउंट आबू में, चाहे भारत भर में, विश्व भर में जहां जहां सेवा केंद्र हैं, वहां आने वाले भाई बहनों के चेहरे पे यदि आप देखेंगे तो एक विशेष शांति दिखाई देती है, अलौकिकता दिखाई देती है, गुस्से का नाम निशान दिखाई नहीं देता है। विपरीत परिस्थितियां तो संसार में रहते हैं तो उनके सामने भी आती ही हैं, लेकिन सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है, शायद राजयोग जीवन जीने की एक ऐसी सुंदर कला उन्हें सिखा रहा है जिससे वो अपने क्रोध को जीतते चले जा रहे हैं। यदि हम भी ऐसे सुंदर अभ्यास करते हैं तो अपने क्रोध पर, अपने मनोविकारों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो किसी कवि ने बहुत सुंदर बात कही है कि खुदा को भी पसंद नहीं शक्ति बयां में, इसीलिए तो नहीं दी उन्होंने हड्डी जुबां में। तो जब हड्डी नहीं दी है, इसका मतलब साफ है कि वो हमारी बयां में शक्ति पसंद नहीं करते, और न ही कोई इंसान भी शक्ति पसंद करता है। लेकिन जब हम गुस्से में होते हैं तो न जाने क्या क्या कह जाते हैं, परिस्थितियां बिगड़ जाती हैं, परिवार के परिवार टूट जाते हैं और बहुत बहुत बड़ी खाइयां बन जाती हैं। इसीलिए अपने क्रोध पर नियंत्रण प्राप्त करें, राजयोग इसमें आपको अवश्य मदद करेगा। आपका जीवन क्रोध मुक्त हो, खुशहाल हो, शांतिमय हो, इन्हीं शुभकामना के साथ दीजिए आज के लिए इजाजत, कल पुनः आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार।
धैर्य और दृढ़ मनोबल से कर दे तू पल भर में मुश्किलें आसान, पत्नी समकरनी के पावन जल से स्वर्ग बन जाएगा सारा ये जहान,
सारा ये जहान
कहता है ये समाधान समाधान समाधान।